नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। क्विंटा ब्रूनसन को उनके शो एबॉट एलिमेंट्री के लिए एमी पुरस्कारों की हास्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। ब्रूनसन 40 से अधिक वर्षों से ये पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। एमी पुरस्कार के 75वें संस्करण में पुरस्कार जीतने के बाद ब्रूनसन ने कहा, मुझे एबॉट एलिमेंट्री के निर्माण प्रक्रिया बहुत पसंद है। मैं खुश हूं कि मुझे अपने सपने को पूरा करने और हास्य अभिनय करने का मौका मिला। इसके अलावा सक्सेशन के लिए मैथ्यू मैकफेडिन, द वाइट लोटस के लिए जेनिफर कुलीज और द बियर के लिए आयो एडीबीरी एवं एबन मॉस बैचराज को विजेता चुना गया। एमी पुरस्कार के लिए नामित कलाकार को हॉलीवुड में लेखकों और अभिनेताओं की हड़ताल के कारण इस समारोह के लिए करीब 4 महीने इंतजार करना पड़ा। अमेरिका के अधिकतर हिस्से में सोमवार को भी हाड़ कपा देने वाली ठंड और शीतलहर का प्रकोप बरकरार जारी रहा। मैरीलैंड के कॉलेज पार्क में राष्ट्रीय मौसम सेवा में मौसम विज्ञानी जैक टेलर ने कहा कि करीब 15 करोड़ अमेरिकियों के लिए ठंडी हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अंटार्कटिका से आ रहे तूफान का असर अमेरिका के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में देखा जा सकता है। रविवार सुबह उत्तरी और उत्तर पूर्वी मोंटाना में पारा 0 से 6.7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 से 40 डिग्री तक दर्ज किया गया। टेलर ने बताया कि मोंटाना के साकों में तापमान 0 से 26 सेल्सियस नीचे चला गया। कंसास, मिसौरी, इलिनोइस और इंडियाना के कुछ हिस्सों में भी पारा 0 से नीचे बना हुआ है। शनिवार को व्यापक पैमाने पर शुरू की गई बिजली कटौती के बाद अमेरिका में करीब 1,14,000 घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली गुल है, जिनमें से ज़्यादातर ओरेगॉन में है। पोर्टलैंड जनरल इलेक्ट्रिक ने आगाह किया है कि सोमवार को तेज़ हवा चलने का पूर्वानुमान है और मंगलवार को बर्फीले तूफान के कारण बिजली आपूर्ति संबंधी मरम्मत के प्रयासों में देरी हो सकती है। शिकागो समेत प्रमुख शहरों में मंगलवार को कक्षाएं निलंबित कर दी गई। तूफान के कारण पोर्टलैंड के आसपास वीकेंड में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 2 लोगों की मौत संदिग्ध हाइपोथर्मिया के कारण हुई। अधिकारियों ने बताया कि मिलवॉकी इलाके में 3 बेघर लोगों की मौत की जांच की जा रही है। ऐसी आशंका है कि उनकी मौत हाइपोथर्मिया के कारण हुई। उटाह में 24 घंटे के दौरान पर्वतीय क्षेत्र में करीब 4 फुट तक बर्फबारी हुई और एक व्यक्ति की रविवार रात को मौत हो गई। वियोमिंग में स्कीइंग करने वाले एक व्यक्ति की हिमस्खलन के कारण मौत हो गई। अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी ने सोमवार को घोषणा की कि वो आयोवा कॉकस में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने के दौर से हट रहे हैं। आयोवा कॉकस में मतदान राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में चलने वाली लंबी प्रक्रिया की शुरुआत है। बायोटेक उद्यमी रामास्वामी ने अपने प्रतिद्वंद्वी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया। इससे पहले उन्होंने ट्रंप को 21वीं सदी का सबसे अच्छा राष्ट्रपति बताया था। हालांकि उन्होंने इसके साथ ही रिपब्लिकन मतदाताओं के नए चेहरे का चुनाव करने के लिए मनाने की कोशिश भी की थी। ईरान ने इरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास एक इलाके पर मिसाइल हमलों के तुरंत बाद एक जासूसी मुख्यालय और ईरान विरोधी आतंकवादी समूहों के जमावड़े पर हमले किए। ईरान ने सोमवार को यह जानकारी दी। कुर्द क्षेत्रीय सरकार की सुरक्षा परिषद ने एक बयान में कहा कि इन हमलों में 4 नागरिक मारे गए और 6 लोग घायल हो गए। इराक के पूर्व सांसद मशान अल जाबोरी की सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार इनमें से एक हमले में प्रमुख स्थानीय व्यवसायी प्रेशा दीजाई और उनके परिवार के सदस्य मारे गए। उन्होंने बताया कि एक मिसाइल दीजाई के महल पर गिरी, जो मेरे घर के पड़ोस में है। इराक में कई अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक हस्तियों ने भी दीजाई की मौत की पुष्टि की है। इसके तुरंत बाद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने सरकारी मीडिया में जारी एक बयान में कहा कि उसने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों सहित आतंकवादी गतिविधियों पर हमला किया और कई बैलिस्टिक मिसाइल दागकर उन्हें नष्ट कर दिया। एक अन्य बयान में दावा किया गया कि उसने इराक के कुर्द क्षेत्र में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर हमला किया। इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन ने 2020 के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए एक ईरानी जनरल की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम को निशाना बनाकर 2 आत्मघाती बम विस्फोट किए जाने की इस महीने की शुरुआत में जिम्मेदारी ली थी। रेवोल्यूशनरी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी के सम्मान में आयोजित एक समारोह में हुए हमले में कम से कम 84 लोगों की मौत हो गई थी और 284 अन्य लोग घायल हो गए थे। ईरान ने इसराइल पर दमिश्क के पड़ोस में हवाई हमले में एक उच्च पदस्थ ईरानी जनरल सैयद रजी मौसावी की हत्या करने का आरोप लगाया है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि अमेरिका ने उन मिसाइल पर नज़र रखी जो उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में गिरी, और उन हमलों में कोई भी अमेरिकी प्रतिष्ठान प्रभावित या क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। ईरान ने 2022 में इरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास परिसर के पास मिसाइल हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि यह हमला सीरिया में इजरायली हमले का बदला लेने के लिए किया गया, जिसमें उनके रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 2 सदस्य मारे गए थे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।